समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ओस की बूंदें फूलों को भिगा रही हैं, ठंडी लहरें एक ताजगी जगा रही हैं। आइए और हो जाइए आप भी इनमें शामिल। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है। वैसे ये लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक नहीं जागे।
बिल्कुल, और हम लोग तो बहुत पहले जाग चुके हैं।
बिल्कुल, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में यह है समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और सारा मुज्तबा हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार, आदाब एवरीवन, वेलकम टू आवर शो आज सवेरे। एंड रवि हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन आवर टुडेज शो, सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। रवि
जी, बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देहरादून और मसूरी जाएंगे। एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री धनखड़ लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आईएएस 2023 बैच के पहले चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैज कॉल्ड फॉर शनिंग डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ टेररिज्म। ही सेड परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म शुड बी इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली डेल्ट विद, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज। Mr. Doval was addressing a security conclave of Shanghai Cooperation Organization or SCO in Astana, Kazakhstan yesterday. He underlined the need for holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorist activities. Mr. Doval also raised the issue of continued threat posed by various terror groups in the SCO region, including those designated by the UN Security Council, such as Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda and its affiliates and ISIS. The National Security Advisor strongly condemned the barbaric terrorist attack at Crocus City Hall in Moscow on 22nd of March and expressed his condolences to the families who lost their loved ones.
लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई से बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। श्री मोदी जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की यह पहली राजनीतिक सभा होगी। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता भी रैली में शामिल होंगे। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तीसरी बार जमुई से चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने अपने जीजा को मैदान में उतारा है, जो 2014 और 2019 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। जमुई के साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले कल श्री मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर विपक्षी नेता हतोत्साहित हो गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी पुराने मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने के संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। नमो ऐप के माध्यम से एक डिजिटल रैली में श्री मोदी ने कहा कि एक मतदान केंद्र कार्यकर्ता को भाजपा का चेहरा होने के कारण अपने आसपास के विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए।
द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड फॉल्स एंड मिसलीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग सिग्निफिकेंट हाइक इन प्राइसेस ऑफ मेडिसिन। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दीज रिपोर्ट्स क्लेम दैट मोर देन 500 मेडिसिन विल बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्राइस। The ministry said that such reports are totally false, misleading and malicious. It added, National Pharmaceutical Pricing Authority or NPPA, under the Department of Pharmaceuticals, annually revises the ceiling prices of scheduled medicines on the basis of wholesale price index. The ministry said there will be no change in prevailing ceiling prices for 782 medicines, while 54 medicines will have a minuscule increase of 1 paisa.
Lok Sabha chunav ke dusre charan ke liye namankan dakhil karne ka aaj antim din hai. इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच कल होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी।
द मुंबई पुलिस अरेस्टेड 9 सोमाली पायरेट्स यस्टरडे हु वर फोर्स्ड टू सरेंडर बाय द इंडियन नेवी रिसेंटली फॉर अलेजेडली हाईजैकिंग एन ईरानियन फिशिंग वेसल एफवी अलकंबर। The foreign nationals were brought to Mumbai yesterday and were handed over to the police. Last Friday, after Navy officials received information about a potential piracy incident, INS Sumedha and INS Trishul were deployed in the Arabian Sea. After intense coercive tactical measures, the pirates on board hijacked FV were forced to surrender. Chief of Royal Australian Navy Vice Admiral Mark Hammond and Indian Navy Chief Admiral R. Harikumar held discussions in New Delhi yesterday on strengthening bilateral maritime cooperation, including increased operational engagements, training exchanges. During his five-day visit, Mark Hammond will visit the Indian Navy's Southern Naval Command at Kochi and Western Naval Command at Mumbai.
मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीप क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान लगाया है। उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लू की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रविवार तक भारी बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है।
And moving on to sports, in table tennis, the WTT FIDE Varazdin 2024 event is set to begin in Croatia today. The competition will feature prominent Indian players such as S.A. Yanushekaran and Manika Batra, among others. Along with Satyan, Pius Jain, Harmeet Desai and Snehit Survejula will compete in the round of 64 of the men's singles event, while in women's singles, Reed Tennyson and Yashaswini Ghorpade will represent India in the round of 64. In mixed doubles, star duo of Manika Batra and S.A. Gyanashekaran will mark their presence in the pre-quarters, while in men's doubles, pair of Pius Jain and Harmeet Desai will participate in the round of 16.
आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 17 ओवर 2 गेंद में 166 रन पर ही सिमट गई। कोलकाता के लिए सुनील नरेन 85 और अंग कृष रघुवंशी ने 54 रन की उपयोगी पारियां खेली। कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 और मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने 55 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 54 रन बनाए। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सायरा मुज्तबा।
थैंक्स रवि, लेट्स स्टार्ट विद शेयर चेन्नई। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास, द क्वांटिटी ऑफ पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेज इन म्युनिसिपल वाटरवेज इज ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स हायर देन द सेफ्टी लेवल्स रेकमेंडेड बाय द अमेरिकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। They were discovered in treated lake water, Adyar River, Buckingham Canal, Perangudi Dumpyard groundwater and Chembarambakkam Lake. The chemicals are termed as forever chemicals because they accumulate in the environment without breaking down or degrading. Non-stick cookware, food packaging, aqueous film forming foam, waterproof materials like raincoats and cosmetics expel these chemicals via sewage and solid waste, polluting ground and surface water and finally finding their way into treated drinking water. Moving on to Bengaluru, the Maratha Light Infantry Regimental Center in Belgavi conducted a lecture session for the youth yesterday with an objective of igniting the spirit of patriotism and educating them on the role of the army in guarding the frontiers. The lecture by army officers also provided details on job opportunities in the Indian Army. It shed light on diverse career paths available with the Indian Army, from combat roles to technical positions. It emphasized that being in uniform is a way of life that molds the individual into a strong, disciplined and committed citizen. Other news from Bengaluru, Union Minister for Information and Broadcasting and senior BJP leader Anurag Singh Thakur is visiting Bengaluru today. He will accompany Bangalore South constituency BJP candidate Tejasvi Surya while filing his nomination today. Tejasvi Surya is the sitting MP from this constituency and is contesting from the seat for the second time. Former Chief Minister B.S. Yediyurappa and other BJP leaders will also be present during the filing of nomination by Tejasvi Surya. Moving on to Hyderabad, the state government appointed senior IAS officers as special officers to monitor the water crisis situation in the state and to mitigate the crisis to ensure adequate supply of drinking water in all urban and rural households on a daily basis. Chief Secretary Santi Kumari issued orders to this effect. The special officers were instructed to visit the assigned districts immediately and focus on addressing the drinking water needs in the districts, in coordination with the district collectors and state-level departments. They were also instructed not to seek leave during this period. So, Ravi, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
भाई मेरे पास भी दिल्ली मुंबई और कोलकाता से बहुत से समाचार हैं तो शुरुआत दिल्ली से ही कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कल दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन में छतरपुर और सुल्तानपुर के बीच लगाए गए गति प्रतिबंध को 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक संशोधित कर दिया है। डीएमआरसी ने अपने पहले के लिए हुए निर्णय में बदलाव किया जिसके अंतर्गत उन्होंने छतरपुर और सुल्तानपुर के बीच 20 किलोमीटर प्रति घंटे की अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने ये निर्णय चौथे चरण के एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के सुरंग के निर्माण कार्य के कारण लिया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह संशोधन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अंतर्गत मेट्रो प्रणाली के अंदर आवश्यक घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ट्रेनों की आवाजाही को तदनुसार नियंत्रित भी किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में अश्विनी बीएसएफ अधिकारी संस्थान में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी कल तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ये प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे से संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 115 से अधिक बीएसएफ कर्मी और उनके परिवार के लोग इस संस्थान में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में विविध प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। इनमें जीवंत चित्र और जटिल नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियों के अलावा पत्थर की मूर्तियों से लेकर नाजुक मिट्टी और बांस की कला भी को प्रदर्शित किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण इन कलाओं के पीछे की कहानियों में निहित है। हरियाणा के दिवंगत बीएसएफ कांस्टेबल की बेटी दीपा धीमा ने अपनी कलाकृति के माध्यम से एक मार्मिक संदेश साझा किया है जो हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। मुंबई पुलिस ने कल 9 सोमाली समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एफवी अल कंबर का अपहरण करने के आरोप में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। विदेशी नागरिकों को कल सुबह मुंबई लाया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। नौसेना अधिकारियों को संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल को अरब सागर में तैनात किया गया। एसओपी के अनुसार 12 घंटे से अधिक समय तक गहन दबावपूर्ण सामरिक उपायों के बाद अपहृत जहाज एफवी पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलते हैं कोलकाता की ओर। 6 अप्रैल को कोलकाता में लोकसभा के आम चुनाव के संबंध में सुरक्षा बल तैनाती बैठक आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में कूच बिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी को कवर किया जाएगा। कल विशेष महापर्यवेक्षक श्री आलोक सिन्हा कोलकाता आए। केंद्रीय बल पहले ही राज्य में आ चुके हैं और रूट मार्च कर रहे हैं। राज्य बल तैनाती समिति का गठन किया गया है। समिति में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब, राज्य पुलिस के एडीजी और राज्य नोडल अधिकारी आनंद कुमार और आईजी सीआरपीएफ पश्चिम बंगाल सेक्टर और राज्य सीएपीएफ समन्वयक बी के शर्मा शामिल हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सायरा के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And if you talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all three cities will have a partly cloudy sky today. In Chennai, the temperature will hover between 26 and 38 degrees Celsius. In Bengaluru, the temperature will hover between 23 and 38 degrees Celsius, while in Hyderabad, minimum temperature was 25 and maximum will be around 39 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Let's take back our listeners to the year 1858. On this day, Rani Lakshmibai fled to Gwalior through Kalpi after giving a solid blow to the British troops. Also on this day in 1898, the first show of imported films was arranged by Hira Lal Sen and his brother Motilal Sen at the Classic Theatre, after which they formed the Royal Bioscope Company.
1905 में आज के दिन कांगड़ा घाटी में आए भूकंप में 20,000 लोगों की जाने गई थी।
ऑन दिस डे 1947 सैन फ्रांसिस्को हेनरी ग्रेडी वॉज चोजन एज द फर्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ऑन दिस डे 1951 वेस्ट जर्मनी एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। एंड ऑन दिस डे इन 1984 राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इन स्पेस फ्रॉम Baikonur aboard Soviet spacecraft Soyuz 11 and he revolved around the earth.
1949 में आज के दिन उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना हुई, जो शीत युद्ध के शुरुआती दौर का नतीजा थी। 1994 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बती बालक उगेन थिनली दोजी की नए करमापा के रूप में घोषणा हुई थी। 2001 में आज ही के दिन चीन का अमेरिका के विमान व चालक दल को लौटाने से इनकार हुआ। 2004 में आज के दिन भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माओवादियों ने 18 भारतीय तेल टैंकरों में आग लगाई। और 2006 में आज के दिन इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर नए आरोप लगे थे। और सायरा, अब समय हो गया है अपने श्रोताओं को कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों और जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का। तो शुरुआत पुण्यतिथियों से ही करते हैं सायरा। इस क्रम में सबसे पहला नाम है उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे गंगाधर मेहरे की, जिनका जन्म तो हुआ था 9 अगस्त 1862 को, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 4 अप्रैल 1924 को। गंगाधर मेहरे का जन्म एक निर्धन जुलाहा परिवार में हुआ था। इन्होंने कपड़े बनाते बनाते कविता करना सीखा। इनके अनेक काव्य ग्रंथों में प्रणय वल्लरी और तपस्विनी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हें उड़िया भाषा का कालिदास कहा जाता है। और गंगाधर मेहरे का 4 अप्रैल 1924 को देहांत हो गया था।
Today we are also remembering Pandit Makhanlal Chaturvedi on his birth anniversary. He was a renowned poet, a writer, essayist, playwright and a journalist who is particularly remembered for his participation in India's national struggle for independence and his contribution to Chhayavad, which is the neo-romanticism movement of Hindi literature. He was awarded the first Sahitya Akademi Award in Hindi for his work Hym Tarangini in 1955. And the government of India also gave him the Padma Bhushan in 1963.
और इनकी एक बहुत मशहूर कविता भी है सायरा, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
क्या बात है, एंड आपने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ी। देयर इज अनदर पोएट हुज बर्थ एनिवर्सरी इज टुडे, अ वेरी रेनाउंड पोएट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, माया एंजेलो, मेमोरिस्ट, अ पोएट एंड ऑल्सो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। माया पब्लिश्ड 7 ऑटोबायोग्राफीज, 3 बुक्स ऑफ एसेज, सेवरल बुक्स ऑफ पोएट्री, एंड इज क्रेडिटेड विद अ लिस्ट ऑफ प्लेज, मूवीज एंड टेलीविजन शोज स्पैनिंग ओवर 50 ईयर्स। She has received dozens of awards and more than 50 honorary degrees. And there's a very beautiful poem by Maya. It's called Still I Rise. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I will rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines, digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise.
और सायरा, आज ही पुण्यतिथि है को और बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि की, जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अज्ञेय को प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई मुख्य रचनाओं में शामिल हैं आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, एक जीवनी आदि। अज्ञेय को भारत में भारती पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीत पुरस्कार आदि के अतिरिक्त 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1978 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं सायरा, आज ही पुण्यतिथि है। समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में भारत में बहुत प्रसिद्ध रहीं हंसा मेहता की, जिनका जन्म तो हुआ था 3 जुलाई 1897 को, लेकिन इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा 4 अप्रैल 1995 को। इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक तथा गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी के साथ हुआ। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थी। महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील हंसा मेहता ने जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।
Today we are also remembering Sukhen Das, a prominent actor of Bengali cinema who has acted in dozens of movies. Aur unke bare mein baat karne se acha hai kyun na ye gana suna jaye.
Ji bhai upohar
sajiye debo gana se tai suniye jabo ananto amari gaan duronto amari pra
अब बात करते हैं पद्मश्री खलील धन तेजवी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1938 को, लेकिन इन्होंने इस संसार से विदा ली 4 अप्रैल 2021 में। आप गुजरात के प्रसिद्ध कवि गजलकार थे। उनका नाम उनके अभिभावकों ने खलील इस्माइल रखा था, लेकिन वडोदरा के धनतेज गांव से होने की वजह से उन्होंने अपने नाम में धनतेजवी उपनाम जोड़ लिया। कविता और गजल लिखने के लिए विख्यात धनतेजवी को लोग मुशायरों में खूब पसंद करते थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। खलील धनतेजवी की शुरुआत में अपने दिमाग में ही गजलें रखते हुए अपने दोस्तों को गजल के पाठ पढ़ाते थे। याद रखने की उनकी यह शक्ति बुढ़ापे में भी मुशायरों में बनी रही। खलील धनतेज भी साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता, प्रिंटिंग प्रेस और फिल्म उद्योग से भी जुड़े थे। उन्हें वर्ष 2004 में कलापी और 2013 में वली गुजराती गजल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2019 में नरसिंह मेहता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें, और खलील धनतेजवी के पहले गजल संग्रह में 100 से अधिक गजल थीं और उनकी गजल को जगजीत सिंह ने भी अपना स्वर दिया था। और अब बढ़ते हैं, बात करते हैं शशिकला के बारे में, जिनका नाम जो है भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिकों में शामिल है और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आपका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1933 शोलापुर महाराष्ट्र में, लेकिन आपने इस दुनिया से विदा ली 4 अप्रैल 2021 मुंबई में। हिंदी सिनेमा की ग्लैमरस खलनायिकों का जिक्र होते ही जहन में उभरने वाला पहला नाम शशिकला का है। सन 1960 के दशक के हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास जगह बनाने वाली खूबसूरत चुलबुली और खलनायिका शशिकला को उस दौर के दर्शक आज भी नहीं भूले हैं। शशिकला न सिर्फ एक उम्दा अभिनेत्री थी, बल्कि मौका मिलने पर उन्होंने खुद को एक बेहतरीन डांसर के तौर पर भी साबित किया था।
Today's also the birthday of N. Chandra, a producer, writer and director known for gritty realism in his early dark and loud films. And very few people would know that he actually got his first break in the film industry in 1971 as a clapper boy in Gulzar's Parichay. And he gradually moved up as film editor and assistant director and worked as associate director and editor in Anil Kapoor's Tara Wo Saat Din. Eventually, with the film Tezab, he actually launched Madhuri Dixit's career, and jo jodi thi Anil Kapoor aur Madhuri Dixit ki, that followed with this film.
Tumse milke, aisa laga tumse milke, arma huye pure dil. तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल।
और अब बात हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी के बारे में, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल के बाद पैदा हुई थीं और वे इकलौती संतान थीं। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था और परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की और 1970-80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सुंदरता का जलवा बिखरने वाली परवीन बॉबी की ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। तो सुन लेते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज एक बहुत ही सुंदर सी मेडली। चलते चलते आज का विचार कि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई है तो जिंदगी कैसे होगी। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और सायरा मुश्तबा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर टूइंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।